एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व के श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने हजारों सालों से पश्चिमी साहित्य को बल्कि पूरी दुनिया की सोच को प्रभावित किया है, होमर की इलियट।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये तो मानवीय भावनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, गुस्से और प्यार का एक गहरा सागर है।
और इसके रचयिता होमर, उनके बारे में भी कितना रहस्य है ना? लगभग 8वीं या 7वीं सदी ईसा पूर्व के, पर क्या वो एक थे या अनेक?
हाँ, ये सवाल तो शायद हमेशा रहेगा, पर उनकी रचनाएं इलियड और ओडिसी वो तो पश्चिमी साहित्य की नींव है, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत।
सही कहा, और ये वो दौर भी था जब कहानियां मौखिक परंपरा से निकलकर लिखी जा रही थी। एक बड़ा बदलाव था ये।
बिल्कुल,
और इलियड जो ओडिसी से भी पुरानी मानी जाती है, शायद ज्यादा सघन भी है। 10 साल के ट्रोजन युद्ध के आखिरी साल की कहानी, वो भी सिर्फ कुछ हफ्तों की।
हाँ, लगभग 16,000 पंक्तियाँ। पहले तो ये गाई जाती थीं, सुनाई जाती थीं, फिर लिखी गईं और ग्रीक संस्कृति का शिक्षा का आधार बन गई।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस महाकाव्य की जटिल कहानी को समझें, इसके किरदारों के उतार चढ़ाव को महसूस करें और देखें कि ये आज भी क्यों इतनी प्रासंगिक है, क्यों हमें इसे जानना चाहिए।
चलिए शुरू करते हैं।
तो कहानी हमें ले जाती है ट्रोजन युद्ध के 10वें साल में।
हाँ, ट्रॉय शहर की मजबूत दीवारें और बाहर यूनानी सेना का डेरा, अकेन भी कहते हैं उन्हें।
और सेना की हालत कैसी है? 9 साल हो चुके हैं।
बहुत बुरी, थकान है, सैनिक बीमार है, घर की याद सता रही है, लड़ाई लंबी खिंच गई है।
और इस सब का मूल कारण, वो तो सबको पता है।
हाँ, ट्रॉय का राजकुमार पेरिस स्पार्टा के राजा मेनेलॉस की पत्नी हेलेन को ले आया था, वो चिंगारी थी।
लेकिन इलियट की कहानी की शुरुआत, वो दिलचस्प है। वो यूनानियों और ट्रोजनों के बीच की लड़ाई से नहीं होती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। झगड़ा तो यूनानियों के अपने घर में शुरू होता है।
अच्छा, कैसे?
होता ये है कि यूनानी सेना के जो कमांडर इन चीफ हैं अगैमेमनॉन, वो अपने सबसे महान योद्धा अकिलीस का अपमान कर देते हैं सबके सामने।
अपमान? किस तरह का?
अकिलीस को युद्ध में इनाम के तौर पर एक लड़की मिली थी, ब्रिसेस। वो उसे पसंद भी करते थे। अगैमेमनॉन अपने अहंकार में उसे जबरदस्ती अकिलीस से छीन लेते हैं।
ओ, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी फिर तो।
बिल्कुल नहीं, ये अकिलीस के सम्मान, उनकी इज्जत, जिसे वो टिमे कहते हैं, उस पर सीधा हमला था।
और यहीं से शुरू होता है अकिलीस का वो भयानक क्रोध। होमर उसे मेनिस कहते हैं।
हाँ, ये साधारण गुस्सा नहीं है,
हाँ।
ये एक तरह का दैवीय विनाशकारी रोष है।
और इस अपमान से टूटकर अकिलीस एक बड़ा फैसला लेते हैं।
क्या?
वो युद्ध से हट जाते हैं।
अच्छा,
अपने सबसे खास सैनिक मर्मिडॉन्स उनके साथ, पूरी सेना छोड़ दी अपने सबसे बड़े योद्धा ने।
हाँ, और इतना ही नहीं, वो अपनी माँ जो एक देवी हैं थेटिस, उनसे कहते हैं कि देवताओं के राजा ज्यूस से प्रार्थना करें कि वो ट्रोजनों की मदद करें,
ताकि यूनानियों को सबक मिले, उन्हें अकिलीस की कमी महसूस हो।
बिल्कुल, और यहीं से इस एक व्यक्ति के क्रोध से पूरी कहानी का पहिया घूमने लगता है। सवाल उठता है, इस क्रोध की कीमत क्या होगी, कौन चुकाएगा?
और कीमत तो तुरंत नजर आने लगती है ना? अकिलीस के बिना यूनानी सेना का क्या हाल हुआ?
बहुत बुरा, वो हारने लगते हैं, ट्रोजन हावी हो जाते हैं, युद्ध का पासा पलट जाता है।
और यहीं हमें कहानी के मुख्य किरदारों से मिलने का मौका मिलता है। जाहिर है, एक तरफ तो अकिलीस हैं।
हाँ, नायक, पर बहुत जटिल, आधे देवता आधे इंसान, ताकत बेहिसाब, पर यह भी पता है कि जिंदगी छोटी है। उनका सफर गुस्से से शुरू होता है, फिर गहरे दुख से गुजरता है और शायद अंत में इंसानियत तक पहुंचता है।
और दूसरी तरफ वो जिनके कारण ये सब शुरू हुआ, अगर मेमनन,
शक्तिशाली राजा सेनापति, पर अहंकारी अदूरदर्शी, जैसे ताकत तो है पर समझ नहीं।
हाँ, कह सकते हैं कि बुद्धि के बिना शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है, उसका उदाहरण।
बिल्कुल, यूनानियों में और भी हैं बुद्धिमान, ओडिशियस, चालाक रणनीतिकार, और वो विशाल का योद्धा अजैक्स, ताकत का दूसरा नाम।
ये तो हुए यूनानी। ट्रोजन खेमे में कौन है मुख्य?
वहां सबसे अहम है हेक्टर, ट्रॉय के सबसे बड़े रक्षक, राजकुमार, और वो अकिलीस से बिल्कुल अलग है।
किस तरह से?
अकिलीस लड़ते हैं व्यक्तिगत गौरव के लिए, अपने क्रोध के लिए। हेक्टर लड़ते हैं अपने शहर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी प्रजा के लिए। वो कर्तव्य निष्ठ नायक है,
जिम्मेदार।
हाँ बिल्कुल। फिर उनके पिता हैं बूढ़े राजा प्रियम, बहुत दुखी चिंतित, और वो राजकुमार पेरिस जिसकी वजह से युद्ध छिड़ा, सुंदर पर शायद उतने वीर नहीं।
और जाहिर है हेलन, जिसकी सुंदरता ने इतना बड़ा विनाश ला दिया।
हाँ, और इन सब इंसानों के ऊपर हैं ओलंपस पर्वत के देवता ज्यूस, हेरा, एथेना, अपोलो।
वो सिर्फ देख नहीं रहे हैं।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो सक्रिय रूप से शामिल है, किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनका हस्तक्षेप कहानी को बार बार मोड़ता है।
हाँ, ये देवताओं का दखल कहानी को और भी पेचीदा बना देता है, जैसे शुरुआत में ही वो अपोलो वाला किस्सा।
बिल्कुल, अगमेमनॉन ने अपोलो के एक पुजारी की बेटी क्रिसिस को बंदी बना लिया था और लौटाने से मना कर दिया, तो अपोलो ने नाराज होकर यूनानी खेमे में प्लेग फैला दिया।
अच्छा, तो ये कारण था ब्रिसिस को छीनने का।
हाँ, जब दबाव पड़ा क्रिसिस को लौटाने का, तो अगमेमनॉन ने अपनी गलती मानने की बजाय अकिलीद से ब्रिसिस छीनकर अपना नुकसान पूरा किया। अहंकार।
एक के बाद एक गलतियां।
बिल्कुल, खैर अकिलीद तो हट गए, ट्रोजन आगे बढ़ने लगे। हालांकि कुछ यूनानी योद्धाओं ने कमाल की वीरता दिखाई, डायोमेडीज का नाम आता है।
हाँ, उन्होंने तो शायद देवताओं को भी घायल कर दिया था।
हाँ, देवी एथेना की मदद से एफ्रोडाइटी और युद्ध के देवता एरीज दोनों को। सोचिए इंसान का जज्बा, अजाक्स ने भी बहुत बहादुरी दिखाई।
लेकिन कहानी का एक बहुत ही मार्मिक मोड़ तब आता है जब हेक्टर थोड़ी देर के लिए शहर वापस जाते हैं।
ओह हाँ, उनका अपनी पत्नी एंड्रमी की और छोटे बेटे इस्टियानिक्स से मिलना, वो दृश्य उफ
दिल को छू जाता है।
हाँ
वो जानते हैं कि शायद ये आखिरी बार है।
हाँ, एंड्रमी की रोती हैं, कहती हैं रुक जाओ मत जाओ, पर हेक्टर के लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है। वो अपने बेटे को गोद में उठाते हैं, उसके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद उसका कोई भविष्य ही न हो।
युद्ध की क्रूरता और पारिवारिक प्रेम का वो द्वंद्व बहुत शक्तिशाली चित्रण है।
इसी बोझ के साथ वो वापस लड़ने जाते हैं। उधर यूनानियों की हालत बिगड़ती जा रही थी, तो उन्होंने अकिलेस को मनाने की एक और कोशिश की।
हाँ, वो दूतमंडल भेजा था ना, ओडिसियस, अजैक्स और उनके पुराने शिक्षक फीनिक्स को।
जी, ब्रिसिस को लौटाने का वादा किया, साथ में ढेरों सोना, चांदी, घोड़े और भी बहुत कुछ।
पर अकिलेस माने
नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। और ये सिर्फ जिद नहीं थी, उनके मन में एक गहरा सवाल उठ रहा था।
क्या?
उनके इस इनकार का नतीजा
भयानक हुआ होगा यूनानियों के लिए।
हाँ, हेक्टर के नेतृत्व में ट्रोजन अब यूनानियों के जहाजों तक पहुंच गए, उन्हें जलाने का खतरा पैदा हो गया, लगा कि अब यूनानी गए।
कहानी एकदम कगार पर आ गई, और यही एक नया मोड़ आता है, शायद सबसे दुखद मोड़, पेट्रोकलिस।
हाँ, पेट्रोकलिस अकिलीस के सबसे प्रिय मित्र, उनके साथी, कुछ लोग कहते हैं प्रेमी भी। वो यूनानियों की यह हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते,
उनका दिल पिघल जाता है।
हाँ, वो अकिलीस के पास जाते हैं, कहते हैं अगर तुम नहीं लड़ोगे तो कम से कम मुझे अपना कवच पहनने दो, मुझे जाने दो,
ताकि यूनानियों का हौसला बढ़े, ट्रोजन डरे।
हाँ, यही सोचकर अकिलीस हिचकिचाते हैं पर मान जाते हैं, लेकिन एक सख्त चेतावनी देते हैं।
क्या?
कहते हैं सिर्फ ट्रोजनों को जहाजों से पीछे धकेलना, भूल कर भी शहर की दीवारों की तरफ मत जाना, जैसे उन्हें अंदेशा हो।
और पेट्रोक्लिस?
वो अकिलीस का दिव्य कवच पहनकर निकलते हैं, और क्या लड़ते हैं, जैसे साक्षात अकिलीस आ गए हों। यूनानियों में जोश भर जाता है।
ट्रोजन पीछे हटते हैं,
लेकिन फिर वो गलती कर बैठते हैं।
हाँ, वही जिसे यूनानी हब्रिस कहते हैं, अति उत्साह, अहंकार। वो जोश में अकिलीस की चेतावनी भूल जाते हैं।
उन्हें लगता है वो ट्रॉय जीत सकते हैं।
हाँ, और वो शहर की दीवारों की तरफ बढ़ जाते हैं,
और वही उनकी
घातक भूल।
पहले देवता अपोलो उन पर वार करते हैं, उन्हें कमजोर करते हैं, फिर एक ट्रोजन उन्हें घायल करता है, और अंत में हेक्टर
उन्हें मार देते हैं।
हाँ, और सिर्फ मारते नहीं, अकिलीस का वो मशहूर कवच भी उनके शरीर से उतार लेते हैं। पेट्रोक्लिस की मौत, ये इलियड का टर्निंग पॉइंट है, इसने अकिलीस को पूरी तरह बदल दिया।
पेट्रोक्लिस की मौत की खबर अकिलीस पर क्या गुजरी होगी?
वो टूट गए, उनका दुख भयानक था। वो जमीन पर लोट रहे थे, अपने ऊपर राख मल रहे थे। उनका जो पहला क्रोध था वो अपमान से जन्मा था, ये नया क्रोध दुख और बदले की आग से जन्मा था, अंधा, विनाशकारी।
ये दुख उन्हें इंसान दिखाता है, पर उनका अगला कदम उन्हें और खतरनाक बना देता है।
बिल्कुल, अब उन्हें सिर्फ बदला चाहिए, हेक्टर से बदला। उनकी माँ थेथिस फिर देवताओं के पास जाती हैं। लोहार देवता हेफिस्टस उनके लिए एक नया जादुई कवच बनाते हैं,
और उस कवच की ढाल उसकी बहुत चर्चा होती है।
हाँ, क्योंकि उस ढाल पर युद्ध के नजारे नहीं हैं, उस पर है आम इंसानी जिंदगी, खेत, शहर, नाच गाना, शादी ब्याह, न्याय व्यवस्था, तारे, सूरज, चांद, पूरी सृष्टि।
जैसे एक आईना हो उस दुनिया का जिसे युद्ध नष्ट कर देता है, जिसे अकिलीज ने शायद खो दिया है।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो ये नया कवच पहनकर अकिलीज लौटते हैं।
अगामेमनॉन से सुलह?
हाँ, औपचारिक सुलह हो जाती है, पर अब अकिलीज को उपहारों की परवाह नहीं, उनका एक ही लक्ष्य है, हेक्टर।
और उनकी वापसी कैसे होती है?
एक प्रलय की तरह, वो ट्रोजनों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। अंधाधुंध मारकाट, नदीस कमांडर लाशों से पट जाती है, नदी के देवता खुद उनसे लड़ने आ जाते हैं।
और अंत में
हेक्टर,
हाँ,
हेक्टर जानते हैं कि उनका सामना मौत है, पर वो पीछे नहीं हटते, अपने शहर के लिए अकेले खड़े होते हैं। अकिलीज, जो अब सिर्फ प्रतिशोध की मूर्ति बन चुके हैं, उन्हें मार डालते हैं। उन्हें पता था कि पेट्रोक्लिस से छीने उस पुराने कवच में कमजोर जगह कहाँ है।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, उनका क्रोध और आगे जाता है।
हाँ, और वो शायद इलियाड का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है। अकिलीज हेक्टर के शव को अपने रथ से बांधते हैं और ट्रॉय की दीवारों के चारों ओर धूल में घसीटते हैं रोज।
ये तो अमानवीय है।
बिल्कुल, ये क्रोध की पराकाष्ठा है, इससे देवता तक नाराज हो जाते हैं। ये दिखाता है कि दुख और क्रोध इंसान को कितना नीचे गिरा सकते हैं।
तो क्या हेक्टर के शव का ऐसे ही अपमान होता रहा?
नहीं, देवता हस्तक्षेप करते हैं, खुद ज्यूस तय करते हैं कि बस बहुत हुआ, हेक्टर को सम्मान मिलना चाहिए। वो अकिलीज तक संदेश भेजते हैं।
और दूसरी तरफ
वो बूढ़े राजा प्रियम को हिम्मत देते हैं और देवता हर्मीस को भेजते हैं कि वो रात के अंधेरे में प्रियम को सुरक्षित दुश्मन के कैंप तक ले जाएं, अकिलीज के पास।
राजा प्रेम अकेले जाते हैं अपने बेटे का शव लेने दुश्मन के बीच?
हाँ, सोचिए जरा उस पिता का साहस और दर्द। और फिर वो क्षण आता है, इलियड का हृदय कह सकते हैं उसे, प्रियम और अकिलीज का आमना सामना।
कैसा रहा होगा वो दृश्य?
बूढ़े राजा प्रियम अकिलीज के तंबू में घुसते हैं, उसके पैरों पर गिर जाते हैं और अपने बेटे के हत्यारे के हाथ चूम कर रोते हुए शव मांगते हैं।
ओह, ये कल्पना करना भी मुश्किल है।
इस दृश्य की ताकत, अकिलीज जो पत्थर बन चुका था वो भी पिघल जाता है, प्रियम की हिम्मत, उनका दुख देखकर।
उसे कुछ याद आता है?
हाँ, उसे अपने बूढ़े पिता पेलियस याद आते हैं, जो जल्दी ही अपने बेटे यानी अकिलीज को खो देंगे। उसे अपनी नियति याद आती है,
और पहली बार
वो अपने दुख से बाहर निकलकर दूसरे के दुख को महसूस करता है। वो साझा दर्द, वो साझा नश्वरता, दोनों दुश्मन, बूढ़ा बाप और जवान योद्धा एक साथ रोते हैं, प्रियम अपने बहादुर बेटे के लिए, अकिलीज अपने दोस्त पेट्रोक्लस और अपनी मौत के लिए।
ये मानवता का क्षण है युद्ध के बीचों बीच।
बिल्कुल, इंसानियत की जीत। अकिलीज न सिर्फ हेक्टर का शव लौटाते हैं, बल्कि 11 दिन के युद्ध विराम का वादा भी करते हैं ताकि अंतिम संस्कार ठीक से हो सके।
ये अकिलीज की यात्रा पूरी हुई क्रोध से करुणा तक।
हाँ, कहानी यहीं समाप्त होती है। ट्रॉय का पतन इसके बाद होता है, वो ओडिसी या दूसरी कहानियों का हिस्सा है। इलियट का फोकस अकिलीज के क्रोध और उसके समाधान पर है।
तो अगर हम इलियट के मुख्य विषयों को देखें तो सबसे पहले तो यही क्रोध, मीनेस है, कैसे एक व्यक्ति का क्रोध तबाही ला सकता है।
बिल्कुल, फिर वो सम्मान, तिमे और गौरव क्लियोस की अवधारणा, योद्धाओं के लिए क्या जरूरी था, नाम कमाना या जीवन, ये द्वंद्व अकिलीज में दिखता है, हेक्टर में भी।
भाग्य बनाम मर्जी का सवाल भी है, बहुत कुछ तय लगता है पर किरदार अपने चुनाव कैसे करते हैं।
हाँ, वही उन्हें परिभाषित करता है, और युद्ध की सच्चाई होमर ने उसे बहुत क्रूरता से दिखाया है। कोई महिमा मंडन नहीं, दर्द, मौत, दुख,
दोनों तरफ का।
और अंत में इंसान होने का मतलब नश्वरता, देवताओं से अलग, प्यार, दोस्ती, परिवार और साझा दुख, जैसे अकिलीज और प्रियम के बीच।
होमर की शैली की बात करें तो वो कहानी बीच से शुरू करते हैं, इन मीडियस रेस, वो उपनाम इस्तेमाल करते हैं तेज तरार अकिलीस, चमकते हेलमेट वाला हेक्टर।
हाँ, वो याद रखने में मदद करते हैं। और वो महाकाव्य उपमाएं, लड़ाई के बीच में अचानक प्रकृति या शांतिपूर्ण जीवन का लंबा सवर्णन, जैसे पत्तियों की पीढ़ियां या शेर का शिकार, वो पढ़ने वाले को रोककर सोचने पर मजबूर करती हैं।
अकेलियस की ढाल का प्रतीकवाद, देवताओं का हस्तक्षेप, ये सब मिलकर इसे सिर्फ कहानी नहीं, एक गहरा चिंतन बनाते हैं।
बिल्कुल, विडंबना है, पूर्वाभास है, बहुत कुछ है।
तो अंत में एलियट हमें सिखाती है कि क्रोध कितना भयानक हो सकता है, पर सहानुभूति, मानवीय जुड़ाव, वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये युद्ध की निरर्थकता पर भी सोचने को मजबूर करती है।
हाँ, और युद्ध की उस कालिमा के बीच भी सम्मान, कर्तव्य और मानवीय गरिमा की अहमियत बताती है। किरदारों की गहराई, उनकी भावनाएं, इसीलिए ये आज भी हमें छूती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।